कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा, मधुबन की धरनी सजा के कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा।
विशेष पुरुषार्थ, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञातापन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, तो स्नेह की निशानी है सब कुछ सफल करो। सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो आज के इस अव्यक्त दिवस का विशेष पुरुषार्थ सारे दिन के लिए, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, तो स्नेह की निशानी है सब कुछ सफल करो। सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल करना अर्थात श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल करना अर्थात किसी कार्य में प्रयोग करना। सफल करना अर्थात वेस्ट न करना। सफल करना अर्थात यूज करना। सफल करना अर्थात ईश्वरीय कार्य में लगाना। सफल करना अर्थात भाग्य बनाना। सफल करना अर्थात भविष्य के लिए जमा करना। सफल करना अर्थात जो सफल करते हैं वो सफलता मूर्त बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा ने निश्चय के आधार से, नशे के आधार से, निश्चित भावी के आधार से अपना सब कुछ सफल किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, वैसे तुम भी अपना सब कुछ सफल करो, जैसे ब्रह्मा ने सब कुछ सफल किया। आज का पुरुषार्थ है, तुम भी सब कुछ सफल करो। एक व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है, वहां पर लड्डू का भोग चढ़ाता है और बाहर आता है। वो भक्त है और उसके पास उसका एक छोटा सा बेटा है, और जैसे ही वो भक्त मंदिर से बाहर आता है, वो छोटा बेटा जिद करता है। क्या जिद करता है? कि मुझे गुब्बारे चाहिए, क्योंकि एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ है और बहुत सारे बच्चे उससे गुब्बारे ले रहे हैं। जैसे ही ये भक्त और उसका छोटा बेटा मंदिर से बाहर आते हैं, वो बच्चा रोने लगता है और वो पिता उसे डांटने लगते हैं कि जाकर पढ़ाई करो, घर पर गुब्बारे से खेलने का अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, और बहुत सारी बातें उसको समझाने लगते हैं। पर वो बच्चा बिल्कुल नहीं मानता और हट करता है, जिद करता है कि मुझे गुब्बारा चाहिए। और तब तक वो गुब्बारे वाला अपना एक गुब्बारा निकालकर उस बच्चे के हाथ में दे देता है, और ये देखकर वो पिता और ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि तुमको तो बस यही चाहिए, अवसर देखा नहीं, बच्चा जिद करते दिखा नहीं और गुब्बारा थमा दिया, यही तुम लोगों की युक्ति है गुब्बारे बेचने की। वो व्यक्ति कहता है, मैं गुब्बारा बेचने नहीं आया हूं, हफ्ते में एक दिन मैं 100 रुपए के गुब्बारे खरीदता हूं, एक गुब्बारा भगवान के मंदिर में लगाता हूं और बाकी सभी छोटे बच्चों को बांटता हूं। क्यों बांटता हूं? क्योंकि मैंने सुना है बच्चे उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, और जैसे ही वो पिता ये बात सुनते हैं कि ये व्यक्ति बेच नहीं रहा है, बांट रहा है, और वो व्यक्ति कहता है, मैं बांट इसलिए रहा हूं क्योंकि बांटने में जो खुशी है वो बेचने में नहीं। तो जिसके पास खजाना होगा वो क्या करेगा? बांटेगा। जिसके पास खजाना होगा वो क्या करेगा? दूसरों को देगा, क्योंकि देने में बहुत खुशी है। और हमारे पास अथाह खजाना है, और आज के दिन का विशेष पुरुषार्थ है, सफल करो, अर्थात कार्य में लगाओ, अर्थात श्रेष्ठ तरफ लगाओ, अर्थात व्यर्थ न गवाओ, अपने सारे खजाने सफल करने हैं। वो व्यक्ति कहता है, जिस दिन मुझे छुट्टी होती है रविवार, उस दिन मैं मंदिर आ जाता हूं और ये कार्य करता हूं, और छोटे छोटे बच्चों को गुब्बारे देने में मुझे बहुत खुशी होती है। तो जहां खजाने होंगे वहां वो बांटे जाएंगे, और बांटने से अलौकिक खजाने, ईश्वरीय खजाने और बढ़ेंगे। और हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हें इस ज्ञान की मस्ती में रहना है, तुम्हें इस ज्ञान की मस्ती में रहना है। उस दिन महावाक्य थे, ये ज्ञान बड़े मजे का है, इस ज्ञान की मस्ती में रहना है, इस अलौकिक मस्ती में रहना है। तो ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सफल करनी है? भक्ति मार्ग में नवनिधि का गायन है, ज्ञान मार्ग में भी नौ खजाने हैं, पर आज हम कुछ दूसरे प्रकार के खजानों की चर्चा करेंगे जो हमें सफल करने हैं। स्थूल से शुरुआत करेंगे और सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला खजाना है धन, सबसे स्थूल, सबसे पहला खजाना वेल्थ, स्थूल। ब्रह्मा के जीवन में वर्णन है कि जैसे ही अलौकिक परिवर्तन हुआ, अपनी चल अचल संपत्ति सब कुछ स्वाहा कर दी, अर्पित कर दी। स्थूल धन, व्यक्ति का मन धन को पकड़े रहता है। धन की आसक्ति का संबंध धन होने या न होने से नहीं है। व्यक्ति गरीब हो सकता है परंतु धन से आसक्त, व्यक्ति करोड़ों में खेल रहा है परंतु वो धन उसे जरा भी स्पर्श नहीं करे, ऐसी भी अवस्था हो सकती है। और धन कमाने के सबसे बड़ा कारण ये है, ये जानना कि धन व्यर्थ हो जाता है, धन से कुछ भी प्राप्ति नहीं, ये समझने के लिए ही उसके होने की आवश्यकता है। जो भिखारी है वो आश से भरा रहता है। आज की मुरली में है, स्वयं को चेक करो, कोई तमन्ना तो नहीं, कोई आश तो नहीं, पुरानी दुनिया को तुम छोड़ चुके हैं, पुरानी दुनिया से तुम पार आ गए, बीती को बीती, बीती का चिंतन न करो, इस संसार की कोई तमन्ना तो नहीं। धन को सफल करना है। यज्ञ में जो गीत बना हुआ है 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें एक वाक्य है, कौन सा, धन के विषय में, धन ही क्यों कहा गया, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। बहुत सोच समझ के गीत बनाया गया था। इस गीत का इतिहास भी रमेश भाई साहब थे, उन्होंने कभी बताया था कि व्यक्ति का मन वहीं रहता है जहां उसका धन होता है, और धन को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के रखता है। तो सबसे पहली चीज जो इस यज्ञ में सफल करनी है वो है धन। ट्रस्टी होकर रहना, ये जो धन है ये ईश्वरीय कार्य में लग जाए। हमारे पास जो धन है वो किसी ना किसी रीति से ईश्वरीय कार्य में लग जाए, किसी ना किसी का कल्याण हो जाए उस धन से। जैसे ब्रह्मा ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, वो ट्रस्ट बना दिया, कारोबार से एकदम से वैराग आ गया, अचानक से रुचि कम हो गई संसार से, एकदम वैराग। जब तक मन विरक्त नहीं, संसार में डूबा हुआ है, तब तक अध्यात्म का ये मार्ग चालू ही नहीं होता। चाहे कोई यहां रहता है फिर भी इसका ये अर्थ नहीं कि व्यक्ति धन के प्रभाव से मुक्त है। स्थूल धन, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता है, उसमें एक सूक्ष्म आकर्षण है। इसके लिए सन्यास मार्ग में दो ही चीजों का त्याग करने के लिए कहा है, कामिनी कांचन, काम और कांचन अर्थात सोना। विदेश में क्रिश्चियन धर्म में सन्यास मार्ग कभी था नहीं, गृहस्थी थी। सबसे पहला एक संत आया था उसमें, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, वो एक पहला संत था, पहला एक योगी था जिसने ये जाना कि ये सारे धार्मिक कहलाने वाले लोग धन में डूबे हुए हैं, उसने जो पहला आश्रम स्थापित किया उसमें दो नियम थे, चैस्टिटी और पावर्टी। चैस्टिटी अर्थात पवित्रता, पावर्टी अर्थात दरिद्रता। एक विधि है जीने की जिसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। हमें याद है हम एक स्थान पर गए थे, एक स्थान पर भट्टी थी और वो भट्टी ऐसे स्थान पर आयोजित की गई थी जो कि किसी सन्यासी का आश्रम था, जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए थे और उस कमरे में कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोगों के कमरों में कितनी सारी चीजें होती है, उस कमरों में एक खटिया थी, एक टेबल था, एक कुर्सी थी, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, ना कोई तस्वीर, खिड़की में पर्दे, बस। कम से कम के साथ जीना, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, क्योंकि साधन आते ही आकर्षण चालू होता है, चीजें आते ही तपस्या अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि भोग जहां है वहां योग नहीं है। संसार में हम जहां भी हैं वहां पर भले ढेर सारी वस्तु है, परंतु अंदर से संन्यस्त बाहर से गृहस्थ चेतना विरक्त हो, चीजों को देखते हुए अंदर से वैराग्य की अवस्था हो, तो सबसे पहली चीज जो सफल करनी है वो है स्थूल धन, जितना हो सके यज्ञ के कार्य में लग जाए, जितना हो सके यज्ञ की वेदिका पर वो स्वाहा हो जाए, ताकि असंख्य आत्माओं का कल्याण हो उस धन से, स्थूल धन से। सूक्ष्म सेवा कर नहीं पाते, समय दे नहीं पाते, कम से कम धन की तो सेवा की जाए, तो धन को सफल करना है। नौ चीजें सफल करनी है, उसमें सबसे पहला है धन, दूसरा है तन शरीर बॉडी। ये शरीर विलासितापूर्ण जीवन के लिए नहीं है, ये शरीर भोग वाटिका में छोक देने के लिए नहीं है, ये शरीर खान पान की आसक्तियों में डुबाने के लिए नहीं है, ये शरीर दो ही चीजों के लिए है, एक तपस्या, दूसरा सेवा। इससे तन को सफल करना है, और तन में सबसे बड़ा आकर्षण इंद्रिय सुखों का आकर्षण है, जो उसे बाहर की वस्तु से प्राप्त होता है, पर बाहर से आया हुआ कोई भी सुख कभी भी स्थायी सुख नहीं हो सकता। संगम युग पर अपने समय को सफल करना है, अपने तन को सफल करना है, अर्थात यज्ञ की सेवा में जितना हो सके उसे लगा देना है। अभी ही हड्डियां दे देनी है इस यज्ञ में। इस तन में रहते हुए तुम ऐसे रहो जैसे इस तन में हो ही नहीं, और तन को आदत पड़ती है, जैसी आदत उसको डालो, उसको 100 बार खाने की आदत डालो तो दिन में वो 100 बार खाएगा, उसको उपवास की आदत डालो तो उसको उपवास की आदत लगेगी, उसको तपस्या की आदत डालो तो वो तप करेगा, उसको भटकाने की आदत डालो तो वो भटकेगा। इस तन की मालिक मैं हूं। लास्ट सीजन जो मुरली चली थी, लास्ट टर्न में 31 दिसंबर में, उसमें प्रश्न था, बच्चे कहते हैं बाबा जो करना नहीं चाहते थे वो हो गया, उत्तर क्या था बाबा का, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर कम है, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो, आंखें वश में हो, कान वश में हो, जिह्वा वश में हो, और इस शरीर को तपस्या में लगाना है, इस शरीर को सेवा में लगाना है, और सेवा को ही तपस्या नहीं समझ लेना। सेवा अलग, तपस्या अलग। हां, सेवा में तपस्या समाई है, परंतु जो बहुत ज्यादा सेवा में लगे हुए हैं, वो हमेशा व्यक्तिगत रूप से ये अंतर हमेशा बरते कि ये सेवा थी, अब मुझे तपस्या अपनी व्यक्तिगत अलग करनी है। भट्टी का आयोजन किया गया, भट्टी हुई, सबके साथ हुई, जो आयोजन करता थे वो कुछ और करने में लगे हुए थे, जो कराने वाले थे वो भाषण देने में या योग कराने में लगे हुए थे, उनके लिए भी और जो आयोजन करता है वो भी, उनकी अपनी अलग भट्टी हो, वो उनकी तपस्या नहीं थी, वो दूसरों के लिए तपस्या थी, उनकी नहीं। उन्हें ये सोचना है मुझे अपनी तपस्या अलग करनी है, सुबह से लेकर शाम तक सेवाएं की, उसमें मुरली सुनी, उसमें दिन भर सेवा केंद्र की सेवा की, कोर्स कराया, मुरली सुनाई, मुरली सुनी, प्रदर्शनी समझाई, वो सब सेवा था, वो सेवा थी। अब मुझे अपनी व्यक्तिगत अलग तपस्या करनी है। मुरली ली, उसका बहुत चिंतन किया, वो चिंतन था, वो मनन था, उस पर भाषण दिया, वो भाषण था, उस पर कोर्स, उस पर सेमिनार, उस पर वर्कशॉप, उस पर दूसरों को समझाया, वो सेवा थी। तपस्या हमारी अपनी व्यक्तिगत है, जिसमें हम नितांत अकेले हैं तपस्या के मार्ग में, इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, वहां पर केवल मैं हूं, बाप है, बस अशरीरीपन का अभ्यास है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, परम धाम की अनुभूति है, वो तपस्या, इसको अलग ही रखना है। 18 जनवरी के दिन यहां आए, क्लास की, मुरली सुनी, चार धाम की यात्रा की, वो एक रूटीन सा था। तपस्या अलग है, तपस्या एकांत में की जाती है, मौन में की जाती है, जहां पर इर्द गिर्द मन के आंगन में कोई भी नहीं, हम अकेले बैठे हैं और बाबा से रूरियान हो रही है। तो ये शरीर तपस्या के लिए, इस शरीर को तपाना है, एक एक इंद्रिय में क्या छिपा है, बदबू पास है इसमें, जन जन की सड़ांध है, क्योंकि एक एक इंद्रियों ने बहुत विकर्म किए हैं, ये हाथ गुनेगार है, बहुत पाप किए हैं। इंद्रियों को तपाना है, तप में, अग्नि कुंड में। आज की अव्यक्त साकार मुरली में अव्यक्त वाणी है, जिसमें एक महावाक्य है, जैसे मलेच्छ भोजन तुम्हें पता चल जाता है, उसी तरह मलेच्छ संस्कार स्वीकार नहीं करने, उसका भी तुम्हें पता चलेगा, परंतु तब जब बुद्धि उसका यंत्र है, जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। प्यूरिटी की परिभाषा दी है आज की मुरली में बाबा ने, महारथियों के दो लक्षण, एक प्यूरिटी, एक यूनिटी। प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, प्यूरिटी अर्थात एक एक संकल्प पवित्र, प्यूरिटी अर्थात जिसमें स्वभाव संस्कार पवित्र, प्यूरिटी अर्थात जिसमें कोई भी विकार का जरा भी अंश भी ना हो, वो प्यूरिटी। तुम्हें अपनी अवस्था बहुत ऊंची करनी है। साकार महावाक्य आज की वाणी में, तुम्हें अपनी अवस्था बहुत ऊंची करनी है। तो ये शरीर के नियम बनाने, ब्रह्मा बाबा 33 वर्ष की तपस्या है, 93 एज में न चश्मा था, बैडमिंटन खेलते थे, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, बैठते थे तो किसी सहारे का आधार नहीं। अर्थात ये 33 वर्ष इस शरीर को कैसे तपाया होगा, ऐसी ही अवस्था नहीं आती है। यहां तो 60 और 70 साल की उम्र में व्यक्ति खटिया पकड़ लेता है, कमजोर पड़ जाता है। ये तभी हो सकता है जब शरीर को तपाया होगा। शरीर को जितना भोग विलास में डुबो वो डूबता है, उसको आदत पड़ती है और फिर वही चाहिए, तलब आकर्षण खींचता है। जितना उसमें तपस्या में डुबाओ उतना ही विषयों से वैराग आते जाता है। ये देह विषय वासनाओं का पुतला ना बन जाए, ये देह तपस्या का पुतला बन जाए। एडिक्शंस है शरीर में, जो चीज वो बार बार करता है फिर उसे वही चाहिए, डिनाय कर दो, नकार दो, अपने आप उसे आदत पड़ेगी। तो दूसरी चीज जो सफल करनी है वो है बॉडी, तन। तीसरी चीज जो सफल करनी है वो है वस्तु, स्थूल वस्तु। उसमें तीन चार चीजें आएगी। सबसे पहला स्थूल वस्तु में साधन, साधन। हमारे पास जो भी साधन है वो वेस्ट न जाए। कपड़े अधिक है बांट दो, भोजन उतना ही लेना है जितना हम खा सके, वेस्ट नहीं करना है। मधुबन में नीचे भंडारा है, उसमें बोर्ड है एक, 16 फरवरी 1988 अव्यक्तवाणी, ये ब्रह्मा भोजन है, दुख भंजक है, इसमें दवा और दुआ दोनों समाई हुई है। इसका कणा कणा कैसा है, मोहर के जैसा है। मधुबन में आते हैं तपस्या करने और यहां पर भोजन वेस्ट करके जाना, चाय वेस्ट करके जाना, टोली वेस्ट करके जाना, फल फ्रूट वेस्ट करके जाना, बोझ लेकर जाना है। इसके पहले भी कहा था, यज्ञ में जो एक एक रोटी तोड़ी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक टुकड़े टुकड़े का हिसाब देना पड़ेगा। तो वस्तुओं में साधन वेस्ट ना हो, वस्तुओं में कपड़े जितने हो सके बांट दो ज्यादा है तो, भोजन, उसके बाद में लाइट इलेक्ट्रिसिटी हमारी वजह से वेस्ट ना हो, उसके बाद में पानी हमारी वजह से वेस्ट ना हो, उसके बाद में डीजल पेट्रोल जहां जा सके पैदल। जगदीश भाई जी जब ऊपर से नीचे जाते थे रुकते थे कि कोई है क्या नीचे जाने वाला, गाड़ी में अकेले नहीं जाते थे, देखते थे यहां से नीचे जाने वाला कोई है क्या, ताकि बहुत सारे साथ में चले जाए, मेरे अकेले के लिए कुछ भी खर्च ना हो। यज्ञ का कम से कम मेरे ऊपर खर्च हो। उसी तरह शरीर में और एक चीज आती है, बीमारियां। जीवनचर्या ही ऐसी है कि बीमार होने की 100% संभावना है, 100% संभावना है, और जब हम बीमार पड़े तो यज्ञ का पैसा हम पर लगता है। यही समझे, चाहे कोई मधुबन में रहता है चाहे कोई सेंटर पर या घर गृहस्थी में जो पैसा आ रहा है, हमेशा यही समझे ये यज्ञ का है। सैलरी भी मिल रही है, समझो ये यज्ञ का है। मुझ पर कम से कम खर्च हो, ये समझना ही नहीं कि ये मैंने कमाया है, मैंने काम किया और फिर मुझे ये सैलरी मिली, ये पैसा भी यज्ञ का है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। ये बहुत शक्तिशाली संकल्प है, विशेष उनके लिए जो बाहर नौकरी करते हैं। मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, या उससे भी बड़ा संकल्प और एक है, मैं स्वयं ही यज्ञ हूं। बहुत बड़ा संकल्प है ये, बहुत पावरफुल संकल्प है, मैं ही यज्ञ हूं। तो तीसरा खजाना, तीसरी चीज जो सफल करनी है, आज का पुरुषार्थ जैसे कहा सफल करना है, जैसे ब्रह्मा ने अपने निश्चय से, नशे से निश्चित भावी जानकर अपना सब कुछ सफल किया, तुम भी अपना सब कुछ सफल करो। तो जो भी वस्तुएं हमारे पास, सब सफल करनी है। कईयों के पास इतने कपड़े पड़े हुए हैं पर छिपा कर रखे हुए हैं, चप्पल ढेर की ढेर पड़ी हुई है, छिपा कर रखी हुई है, सफल करनी है। स्थूल वस्तुओं को भी सफल करना है इस यज्ञ में। कितने कुमार हैं सेवा केंद्रों पर, बहुत सारी कम चीजें उनके पास, सफल करनी है। और जब खजाने हमारे पास होते हैं और खजाने छिन जाते हैं तो क्या होता है, दुख होता है। इसीलिए इससे पहले कि वो नष्ट हो जाए उनको सफल करना है। एक संत था, योगी पुरुष, भिक्षाटन करता था, भिक्षा मांगता था, अपना जीवन यापन करता था। छोटी सी कुटिया थी, जो भी भिक्षा में लाता था दिन भर खा लेता था और दूसरे दिन, अगले दिन के लिए नाश्ते के लिए कुछ भोजन बचाकर रख देता था सुबह सुबह के लिए। पर उसकी कुटिया में एक चूहा था, बड़ा उपद्रवी। वो चूहा उसका नाश्ता खा लेता था जो दूसरे दिन के लिए है। तो उसने एक युक्ति की, उस भोजन को एक थाल लिया और उसको ऊपर टंगा देता था ताकि वो चूहा वहां तक नहीं पहुंचा। पर वो चूहा परम शक्तिशाली था, बिल्ली से भी ऊपर कूद लेता था, तो वो कैसे भी करके वहां पहुंच जाता था और उसका भोजन खा जाता था। एक बार इस संत के घर उसका मित्र आता है रुकने के लिए, और रात में जब दोनों वो भोजन करते हैं, रात में जब सोते हैं, ये संत अपने हाथ में एक डंडा रखता है और वो जो उसको मारते रहता है। तो ये मित्र परेशान होता है, कहता है मैं इतनी बातें कह रहा हूं, हम इतने दिनों के बाद मिल रहे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो डंडे से। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा भोजन जो ऊपर कल के लिए जो रखा हुआ है, वो चूहा आता है उसको डराने के लिए, उसको भगाने के लिए मैं आवाज करते रहता हूं डंडे से ताकि वो ना आए। तो वो मित्र कहता है अच्छा ये बात है, क्या तुम्हें यह पता है कि उस चूहे का बिल कहां है। वो कहता है नहीं। वो कहता है पहले हम ये पता करेंगे। दोनों जागते हैं रात भर और वो चूहा आता है और ये लोग वो आवाज करते हैं और उसका पीछा करता है, चूहा अपने बिल में चला जाता है। फिर वो लोग वहां जाते हैं दोनों, उस बिल को कुछ हथियार से उसको खोदते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं वहां पर बहुत सारा भोजन रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है उसने, उस चूहे ने। वो उसका सारा के सारा भोजन निकाल देते हैं वहां से और उस बिल को नष्ट कर देते हैं। दूसरे दिन, दूसरी रात जब ये दोनों सोते हैं, फिर से वो जो संत है योगी पुरुष वो ठक ठक करने लगता है। ये मित्र कहता है अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब नीचे रख दो अपना डंडा। वो कहता है क्यों? वो कहता है तुम खुद ही देख लेना, आधी रात होती है, निश्चय अपने समय पर, नीत समय पर वो चूहा फिर आता है, ऊपर भोजन लटका हुआ है, चूहा छलांग लगाता है पर यहीं तक छलांग लगा पाता है, पूरा नहीं लगा पाता। पहले तो एक छलांग से पकड़ लेता था, अब चूहा छलांग नहीं लगा पा रहा है। क्यों ऐसा हुआ बताओ? नहीं, उसका खजाना लूट गया, उसकी हिम्मत गई काम से, मन का जो बल था, कॉन्फिडेंस था, वो खत्म हो गया। अब क्योंकि उसका खजाना लूट गया है, जिसका खजाना लूट जाता है वो शक्तिहीन हो जाता है, जिसका पवित्रता का खजाना छिन जाता है वो शक्तिहीन होकर गिर पड़ता है, जिसका ज्ञान का खजाना लूट जाता है वो आत्म उत्साह विश्वास खो बैठता है। इसके लिए अपने खजाने को कभी भी किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देना है, क्योंकि हमारे खजाने बहुमूल्य है, और सब जैसे कहा सबसे श्रेष्ठ खजाना है पवित्रता का खजाना। जरा भी मलेच्छ संकल्प ना है, कुछ भी हो जाए, परंतु प्यूरिटी कल की मुरली में था ना, सेमी काम का नशा, किसी से भी दिल ना हो लगे, किसी से भी नहीं, धन शरीर वस्तु। चौथी चीज जो सफल करनी वो है संकल्प। ऐसी चीजों में व्यस्त नहीं हो जाना है जो काम की नहीं, जो व्यर्थ है, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी सोच रहे कितने संकल्प वेस्ट कर रहे उसके लिए, जो चीज बदल नहीं सकती। आज की मुरली में है विनाश की बहुत सारी बातें, फ्लड्स होगा, धरती कपेगी, ये होगा वो होगा, पर ड्रामा में ये सब होना ही है। उसमें बाद में एक लाइन है आज की मुरली में बहुत शक्तिशाली, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हमें ऊपर से दिख रहा है अन्याय हो रहा है, इसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, यहां पक्षपात हो रहा है, वहां पक्षपात हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इतना सब कुछ होते हुए भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, भगवान का क्या वाक्य है इसके लिए? बाबा कहता है इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। बीती सो बीती, आज की मुरली में बीती का चिंतन करना ही नहीं तुमको, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो योगी है, मेरे से अधिक समय से ज्ञान में है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो हो रहा है हमें शायद एक ही जन्म का दिख रहा है, अगर हमें पुराने सारे जन्मों का दिखा दिया जाए तो हम कहेंगे बहुत ही अच्छा हुआ, अब जिसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं कि अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, ये जो घटना घटी इसको ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, अगर हमें पूरा ही दिखा दिया जाए तो हम कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, अभी दिख रहा है उसके साथ अन्याय। अन्याय इस ड्रामा में हो नहीं सकता, ड्रामा न्यायकारी है, चाहे किसी ने जो कुछ किया, भगवान कह रहा है जो इस ड्रामा के बाहर है, जो साक्षी है वो यहां है, सृष्टि के बाहर, यहां से सब देख रहा है वो, हम यहां है, हमें तो जन्म भी नहीं पता हमारे, हमने क्या क्या करके रखा है। आज की मुरली में महारथियों की कर्म कहानी एक दिन विश्व के आगे स्पष्ट होगी, महारथियों के कर्म की कहानी एक दिन विश्व के आगे स्पष्ट होगी, आज की अव्यक्तवाणी है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो करना क्या है फिर? अब ये समझने अच्छा हुआ मेरे सारे हिसाब किताब चुप तू हो गए, अच्छा हो गया उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, ऐसा भी नहीं कि, और अगर दूसरों के साथ कुछ हो रहा है उसमें केवल रहम नहीं, अब कुछ और भाव लाना है उसके भी ऊपर का, साक्षी होकर देखना है ये सारी हलचल को। बाबा ने कहा फ्लड्स होगी, भोजन नहीं मिलेगा, अर्थक्वेक होगी, बम ऐसे ऐसे जिसकी बात से ही लोग मर जाएंगे, गैस, ऐसी दुर्गंध निकलेगी कि जिस दुर्गंध से ही लोग मर जाएंगे, ऐसा दृश्य आने वाला है। तो चौथी चीज जो सफल करनी वो है संकल्प। कल भी कहा था संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है, मनन करना, चिंतन करना, विवेक, तर्क, विजुलाइजेशन और स्वमान। पांचवी चीज जो सफल करनी वो है बोल। जब हम बोले आत्माओं को बाप की याद आ जाए। कितना अच्छा वाक्य है, जब तुम बोलो तो आत्माओं का ध्यान उसकी तरफ चला जाए, इस संसार से ही हट जाए, नष्ट मोह होते हैं आत्मा। आज की मुरली में तुम बाप का वर्षा तब तक नहीं पा सकती जब तक नष्ट मोह नहीं बनी हो, आज की मुरली में महावाक्य है। हम बोले तो उससे वैराग झलके, आत्माओं को वैराग आ जाए, विषय विराग ईश्वरे अनुराग। बोल, हमारे बोल व्यर्थ बातों में, गपशप में, गॉसिप्स में, परचिंतन में, परदर्शन में, आज की मुरली में पवित्रता की परिभाषा में बाबा ने कहा है ईर्ष्या और घृणा होना, ये भी इम्प्यूरिटी है। और ईर्ष्या घृणा जब अंदर होती है तो बाहर से उस आत्मा की ग्लानी होती है, संडे की अव्यक्त वाणी। उदारचित बनने के तीन चीजों को छोड़ना है, कौन से, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म। ईर्ष्या अर्थात खुद परेशान दूसरे परेशान, घृणा अर्थात खुद गिराना दूसरों को गिराना, और क्रिटिसिज्म अर्थात कोई जा रहा है उसको धक्का दे देना और गिरा देना, पीछे से धक्का दे देना और गिरा देना, और फिर क्या कहना उसको, सॉरी। बोल को भी सफल करना है। उसके बाद में छठवा, कर्म को सफल करना है। हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ हो, बाबा की महावाक्य, भ्रष्ट कर्म करना बंद करो। बहुत भ्रष्ट कर्म कर लिए, अब दैवी कर्म करो, अब ईश्वरीय कर्म करो, ईश्वरीय कर्तव्य करो। देवताई, आज क्या कहा, देवताई दिमाग, आज कहा देवताई दिमाग, हमेशा चलन कहते हैं। तुम्हारा दिमाग कैसा होना चाहिए, देवताई। हर दिन मुरली में नए शब्द होते, नए महावाक्य होते, जैसे ही नए महावाक्य दिखे, नए शब्द दिखे, पकड़ लेना है उसके, उसको झपट के खींचना है, उधर से अलग रखना है और उनका चिंतन करना है, विचार सागर मंथन, तो ज्ञान का खजाना सुरक्षित रहेगा। नहीं तो रोटी ऊपर है पर छलांग मार नहीं सकेंगे, हमारी हालत उस मुशक की तरह हो जाएगी जो अब आत्मविश्वास खो चुका है। कर्म, हमारे कर्मों से बाप का साक्षात्कार हो। संडे की मुरली में था, चमकता माथा, चमकते होठ, चमकता चेहरा, जैसे वो जादूगर दिखाता है देखो वैसे तुमसे बाप का साक्षात्कार हो, तो कर्म हमारे ऊंचे हो। तो छठवीं चीज जो सफल करनी है वो है कर्म। सातवां समय, जरा भी टाइम वेस्ट ना हो। इस संसार में जो भी महान आत्माएं हुई है, अगर उनको उनकी सफलता का राज पूछा गया तो एक ही चीज बताइए सबने, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। कोई भी व्यर्थ बातों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, कोई भी चीज में टाइम वेस्ट ना हो। देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे समय को चुरा लेती है, फोन पर बात करना, ट्रैवलिंग, कुछ भी हो, हर चीज समय को सफल करना है। समय को जिसने नष्ट किया, समय एक दिन उसको ही नष्ट कर देगा, और अभी तो समय बहुत कम है। और आज नया साल, उसमें भी अव्यक्त मास, उसमें भी 18 जनवरी और उसमें भी बाबा मिलन, 4 in 1। तो आज का समय तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ये समझना जैसे आज नया दिन है, आज बहुत सारे नई चीजों की शुरुआत कर लेनी है। जो आज तक करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे वो आज शुरू करनी है। अब तक संयम चाहते थे नहीं हो रहा था, आज वो संयम करके देखना है ताकि आज का संस्कार आगे काम आए। जैसे आज शुरुआत है, हर दिन वैसे शुरुआत है, पर आज जैसे कहा 4-in-1 विशेष दिन है, आज कोई नई शुरुआत करनी है। मन को लक्ष्य देना है। जब तक लक्ष्यहीन है मन, तब तक वो भटकता रहता है, उसको पता ही नहीं करना क्या है। शाम को कोई लक्ष्य ही नहीं दिया है, क्या करेगा? भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। और जब मन खाली होता है तो किससे भरता है? दो चीजों से भरता है वो, एक तो भोजन से और दूसरा डिजिटल दुनिया से। खाली मन किससे भरता है? खाली है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्या करना है पता ही नहीं। एक घंटा है हमारे पास, क्या करेगा? भोजन को ढूंढेगा, कुछ है क्या या कुछ बनाऊं क्या। या तो डिजिटल नगरी, अननोन गलियां, अज्ञात गलियों में भटक जाते हैं और आना बहुत मुश्किल होता है फिर। तो समय वेस्ट ना हो। दो चीजें इसमें, एक है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग मतलब टाइम बफरिंग होता है, एक टाइम बॉक्सिंग होता है। टाइम बॉक्सिंग अर्थात टाइम टेबल बना के रखना है। जैसे अभी 5 से 6 ये क्लास, 6 से 7 क्या करना है, इसका टाइम टेबल बनाना है। कोई मिल जाए उसके साथ बातें करने में लग जाए, टाइम वेस्ट। 7 से 8 मुरली, 8 से 9 शांति स्तंभ, उसके बाद में क्या, उसके बाद में नीचे जाना है। नीचे जाते समय किस संकल्पों के साथ नीचे जाना है, ट्रैवलिंग करते समय क्या प्लानिंग हो, नीचे पहुंचने के बाद, कमरे में जाने के बाद, 9 से 10, 10 से 11, इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। पूरे दिन की हल्की सी भी प्लानिंग हो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। जहां प्लानिंग नहीं है, जहां एमलेसनेस है, लक्ष्यहीनता है, वहां ये दो चीजें आके घुस जाएगी। क्या क्या खाऊं, क्या बना है या बनाऊं, या तो डिजिटल दुनिया। नियमों के पक्के रहना है। ब्रह्मा बाबा के जीवन का एक सबसे बड़ी धारणा जो थी वो नियमों के बहुत पक्के थे। जब कहीं बाहर भी जाते थे अज्ञान काल में भी अपने नियमों को नहीं तोड़ते थे। दूसरी बात, अगर उनके यहां कोई आ जाता था और वो पूजा में व्यस्त है, खुद नहीं जाते थे उनका स्वागत करने, किसी और को भेज देते थे, क्योंकि पूजा का जो नियम है उसको नहीं तोड़ना है। जो नियम बना दिया वो बना दिया, बस। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये मत कहो क्यों क्या कैसे, आर्मी का नियम है, देर इज बट टू डू एंड डाई, करो और मरो। ये नियम है, पक्के नियम है आर्मी के। हम भी रूहानी आर्मी है, हमारे भी वैसे ही नियम होना चाहिए, अनुशासित जीवन होना चाहिए। नहीं तो जीवन बिखर जाता है, दिन बिखर जाता है, शाम में फिर वही कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, पश्चाताप से ही आत्मा सोती है कि आज का दिन गया, नया कुछ प्राप्त करना है। बाबा जगदीश भाई ने लिखा है ब्रह्मा बाबा के बारे में, बाबा 18 से 20 घंटा हर दिन सेवा में रहते थे। अब प्रश्न है हम कितना देर रहते, 18 to 20 आवर्स, कितने घंटों में? 24 घंटों में। यह है सेवा का पीरियड, 18 to 20 आवर्स। हम क्या कर रहे हैं? बोल, कर्म, समय, समय वेस्ट ना हो। टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनानी है एक। टाइम वेस्टर्स, एनर्जी ड्रेनर्स, ये दो शब्द है। कौन सी चीज है जो मेरा रोज अपने आप आती है वो चीज और टाइम वेस्ट कर देती है? वो कोई विचार हो सकता है, कोई स्मृति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। आज कहा प्रलयंकारी रूप, ये ज्वाला स्वरूप संगठन है। महाकाली रूप धारण करो मोह अगर है तो। टाइम वेस्ट अगर हो रहा है ज्ञान मार्ग में, जो मेरे और बाबा के बीच में आ रहा है उसे विष समझ कर त्याग दो। वो कितना ही अनन्य मित्र हो, व्यक्ति हो, संबंधी हो, कोई भी हो, मन से विरक्त हो जाना उससे, क्योंकि जो मेरे और उसके बीच में आ रहा है वो दुश्मन है। मीरा तुलसीदास को खत लिखती है कि मैं क्या करूं, मेरे देवर मेरी सास मुझे बहुत सताते हैं, सारे लोग यहां पे सताते हैं। राजस्थान से खत लिखती है वृंदावन तुलसीदास को, मैं क्या करूं। तुलसीदास का बहुत सुंदर जवाब है, जैसे, और वो कहती है मेरे अपने हैं, ये मेरे घर वाले हैं, इनका मैं क्या करूं। तुलसीदास लिखता है जैसे प्रह्लाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, जैसे भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया, जैसे बाली ने अपने गुरु का कहना नहीं माना, शुक्राचार्य का, उसने बताया ये जो छोटा बालक है ना इसको बालक मत समझना, वामन अवतार, ये कुछ भी कर लेगा, ये छल करेगा, वो नहीं सुनता। ये तीनों ने अपने ना गुरु की सुनी, ना पिता की सुनी, ना मां की सुनी, क्योंकि उनको लगा ये उनके मार्ग में आ रहे हैं। इस ईश्वरीय मार्ग में कोई भी आता है बीच में, मन से छोड़ दो उसको, विरक्त तो हो जाओ, हो सके तो स्थूल भी। वो जो दोस्ती है वही अगर बंधन है, वो नाम ऊपर से सेवा का लेबल चिपका के रखा है, अंदर से कुछ और, हटा दो उसको। समय को सफल करना है। उसके बाद में आठवां, संबंध संपर्क को सफल करना है। हम जिनके भी संबंध में आए उनका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए, हम जिनके भी संपर्क में आए उनको हमसे कुछ ना कुछ मिल जाए, तो वो संपर्क सफल हुआ। ऐसे ही व्यर्थ के कॉन्टेक्ट बना के रखने में कोई मतलब नहीं है। जब देखो तब रिक्वेस्ट भेजते रहते फ्रेंड की सोशल मीडिया पर, ग्रुप्स बनाते रहते हैं, नहीं, नहीं। हमारे जो भी संबंध संपर्क है उस संबंध संपर्क से हमसे सेवा होती रहे, और सेवा का ही संबंध हो, दूसरा संबंध नहीं। दूसरे संबंध जोड़ेंगे तो आत्मा अंदर से शक्तिहीन होती जाती है, प्यूरिटी का खजाना लूट जाता है सूक्ष्म में, फिर कैसे उछल पाएंगे, छलांग लगा पाओगे, वहां तक गिरेंगे। लास्ट खजाना, खजाना कहो या जो चीज सफल करनी है वो है अपनी विशेषता और अपने गुणों को सफल करना है। हमें अपने गुण और विशेषताओं को किस लिए प्रयोग करना है, यज्ञ की सेवा के लिए। किसी में स्थूल सेवा करने का गुण है, किसी में भाषण देने का गुण है, किसी में गायन का गुण है, किसी में लिखने का गुण है, किसी में कोई विशेष सेवा का गुण है, चित्रकला का गुण है, कोई भी कला हम में अंदर हमारे अंदर है उसको अपने तक सीमित नहीं रखनी है, अर्पित कर देना है बाबा के सामने। वो गुण वो कला वो हुनर उसमें निखार आएगा धीरे धीरे, जैसे ही वो गुण वो कला ईश्वरीय सेवा में लगेगी। तो आज बहुत विशेष दिन है, विशेष दिन का विशेष पुरुषार्थ क्या बताया, सफल करो, सफल करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर, निश्चित भावी के ज्ञातापन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, तो स्नेही की निशानी है सब कुछ सफल करो। सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना, सफल करना अर्थात तो वेस्ट न करना, ना हमारा कोई संकल्प वेस्ट हो जाए। और संकल्प यदि सबसे सूक्ष्म संकल्प है, संकल्प वेस्ट हो रहे, क्यों वेस्ट हो रहे, क्योंकि एक परिस्थिति आ गई और हम हथौड़े से उसको तोड़ रहे हैं, उस पहाड़ को। बाबा ने कहा हथौड़ा से नहीं तोड़ो उसको, छोड़ दो। जब भगवान के महावाक्य की इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, सभी निर्दोष है, यहां पर हम किसके विरुद्ध षड्यंत्र करें, हम किसके खिलाफ शिकायत करें, हम क्यों ऐसा कहें कि इसने मेरे साथ अन्याय किया है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है अब तक वैसा ही होना चाहिए था। जो जो लोग आए और जिन्होंने जो जो शब्द बोले वही शब्द बोलने चाहिए थे, या उससे भी कठोर, कम कठोर बोला उन्होंने, बड़े रहम दिल थे, इतनी रहम दिखाने की आवश्यकता नहीं। जब यही सत्य है कि अल्टीमेट आज की मुरली में है, अपने आप को चेक करो, मन्मत में हो परमत में हो, श्रीमत से परफेक्ट बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे। एक एक वाक्य हीरा है, हीरा पकड़ लेना है, मुरलियों को प्योर डायमंड बनना है। एक एक लाइन मुरली की उसमें पावर है, एक लाइन भी ली जाए और उसका मनन किया जाए, उसको रटा जाए, उसको चिंतन किया जाए, उसमें डूबा जाए, तो आत्मा में बल भर जाता है। और वो जो दुख में डूबी थी आत्मा, एक ही चीज घटना क्या हो गई छोटी सी जीवन में, दिन रात उसी का चिंतन चालू है। 10 दिन हो गए अब तक छूटे नहीं, 10 मास हो गए अब तक छूटे नहीं, इतने साल हो गए घटना को हुए, पर पकड़े हुए है उसको जोर से। छोड़ दो उसको, बीती सो बीती आज की मुरली में है। तो ऐसी 9 चीजें हैं जो सफल करनी है। सबसे पहले बताया धन, अपने धन पर कुंडली मारकर जो जो बैठे हैं, भक्ति मार्ग में कहावत है ना, जो लोभी होते हैं वो अगले जन्म में क्या बन जाते हैं, सांप, और क्या करते हैं, तिजोरी के ऊपर बैठते हैं, ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। जब टाइटैनिक डूबा था, उस टाइटैनिक जहाज में अमेरिका का एक टाइटैनिक निकली थी यूरोप से अमेरिका के लिए जाने के लिए, उसमें एक ऐसा व्यक्ति था कि जो बहुत बड़ा करोड़पति था अमेरिका, सबसे करोड़पति, उसका नाम हम भूल गए। उसने लिखा है कि मेरे जैसा दुखी और मेरे जैसा निर्धन इस संसार में ही कोई होगा, क्योंकि अब मैं डूब रहा हूं। मरते मरते वाक्य बोल के गया था, मेरा सब जा रहा है। पहला धन, दूसरा शन, ये देह, इस देह को ऐसी आदतें नहीं डाल देनी है कि जिससे बीमार पड़े, जिससे भोग की लालसा हो, दिन रात भूख लगती रहती है, अर्थात तपस्या की कमी है। कष्ट नहीं सहन करते कर सकते शारीरिक, अर्थात आत्मा भी शरीर को चिपकी हुई है, सूखा नारियल नहीं बनाया, गीला नारियल है अभी। तीसरा वस्तु, वस्तुएं बहुत जमा करके रखी है, यहां से जाने के बाद, घर जाने के बाद थोड़ा सा निकालना अपनी अलमारी वो भी आ सकता है, वस्तु अर्थात वस्तु, सारी वस्तुएं, 100-100 सारियां भर के रखी है अंदर, चप्पल तो पूछो मत, थोड़ा सा सफल करना है अब उसको, जो काम का नहीं है वो। उसके बाद में संकल्प वेस्ट ना हो, उसके बाद में बोल, हमारे बोल में रूहानी पावर हो, हमारे शब्दों में वैराग्य जगाने की शक्ति हो, हमारे शब्दों में प्यूरिटी के प्रकंपन हो, पवित्रता के वाइब्रेशंस हो, शब्द इतने शक्तिशाली हो कि उसमें प्यूरिटी हो, चिपकी हुई खींचे वो प्यूरिटी, शब्दों शब्दों का प्रभाव नहीं होता है, शब्दों में निहित जो प्यूरिटी है उसका प्रभाव पड़ता है। अगला कर्म, कर्म श्रेष्ठ करने, बहुत भ्रष्ट कर्म कर लिए, बहुत पाप कर्म कर लिए, व्याभिचार बहुत कर लिया, आज की मुरली में चेक करो मेरी अव्यभिचारी याद है, अव्यभिचारी याद रहता तो और किसी की याद नहीं। आज की मुरली में बाबा ने एक वाक्य कहा, ये है अंतिम मंत्र, कौन सा, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये है अंतिम मंत्र, बाकी और कोई नहीं। तो अगला संबंध, अगला समय, उसके बाद संबंध संपर्क, उसके बाद अपने गुण और विशेषता। तो आज विशेष अव्यक्त दिवस है और सारे दिन भर ब्रह्मा बाबा को आह्वान करना है, पुकारना है, ताकि शाम का जो हमारा मिलन है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाए। सारे दिन भर आह्वान करना है, क्या आह्वान करेंगे, क्या आह्वान करेंगे, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। क्या आह्वान करेंगे? गगन बरस रहा है, नयन बरस रहे हैं और मन तरस रहा है, अब तो आजा। शीतल पवन है परंतु ये आग लगा रही है, उल्टा काम कर रही है। शीतल पवन ये लगाए अगन, वो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा रहे। तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ा, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी ना जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और पुकारेंगे उसको, आ जाओ।
लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, आ लौट के आ जा मेरे मी, आ लौट के आ जा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी, तब तो आ जा। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आ जा। शीतल पवन ये लगाए अगन, हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी, एक पल है रोना, ऐसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुला। बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत।